बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में हम हाज़िर ख़िदमत हैं। मौजूद है मेरे साथ हज़रत साबिक उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब,
वालेकुम
आप
अस्सलाम।
सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हज़रात पूरा रमज़ान देख रहे हैं गामदी साहब के साथ, ये खसूसी नशरियात है रमज़ान मुबारक में। हमारी कोशिश है कि कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करें, वो अमली पहलू जिन्हें अपना कर इस महीने में शायद हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द करने के लिए अपनी तरबियत कर सकते हैं, अपनी आप को याद दहानी करवा सकते हैं जिन पर हम अव्वल पैरा हों। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सामने आज जो मौजू है कुरान मजीद से इंतखाब करदा, वो गुरूर और तकबर का है। कुरान मजीद में जा बजा ये मौजू ज़ेर बहस आया है। सूरह निसा की आयत का मैंने इंतखाब किया है। इरशाद फरमाया, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इतराते और अपनी बड़ाई पर फख्र करते हैं। हम सब ने अपनी तफसीर अल बयान में इसकी तौजीह की है। आप लिखते हैं, अदाए हुकूक और एहसान की ताकीद के बाद ये उसकी मनाफी जहनीत का बयान है। मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खुद अपनी काबिलियत और अपनी तदबीर और हिकमत का करिश्मा समझने लगते हैं, उनके अंदर तवाजो और शुक्रगुजारी के जज्बे के बजाय इतराने और अपनी बड़ाई पर फख्र करने की जहनीत पैदा हो जाती है। ये इतराने और बड़ाई मारने वालों की चंद मजीद खसूसियात बयान हुई हैं। उस्ताद इमाम मौला मीना हसन असलाही अपनी शौरा आफाक तस्तरीक तदब्बुर कुरान में लिखते हैं, पहली ये कि खुद भी ये बखील होते हैं और दूसरों को भी बुखल का मशवरा देते हैं। बखील उस शख्स को कहते हैं जो दूसरों के हुकूक अदा करने में तंग दिल हो, जो शख्स दूसरों के हुकूक फयाजी और कुशादली के साथ अदा करता है लेकिन खुद अपनी जात के मामले में एहतियात और तंगी बरतता है, उसको बखील नहीं कहते। बखालत का सबसे बड़ा सबब यह होता है कि आदमी अपने माल और असबाब को खुदा की देन समझने के बजाय खुद अपनी तदबीर और काबिलियत का करिश्मा समझने लग जाता है। हम सब, मैं, आप, हम में से हर शख्स, इस वक्त लाखों करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी शख्स अपनी शख्सियत के ऊपर निगाह दौड़ाएगा तो सबसे पहली चीज जो उसको महसूस होगी, एक घर में, एक खानदान में, एक इदारे में, एक माशरत में, एक मुल्क में, वो ये है कि हम अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम बासलाहियत हैं, अल्लाह ने हमें अगर माल दिया है तो हम लोगों को माल भी दिखाना चाहते हैं, जहानत दी है तो उसका भी इजहार करना चाहते हैं। अगर कोई शख्स जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है और वो हकीकत में पाया भी जाता है और वो लोगों के सामने इसका इजहार करता है, तो इसमें बुराई की क्या बात है? अल्लाह ताला को क्यों पसंद नहीं है तकब्बुर करना? इसलिए कि प्राइड अगर है तो वो किसी इस्तेहकाक की बुनियाद पर है। मैंने मेहनत की होगी, मेरे दादा ने मेहनत की होगी, हम लोगों ने अरबों खरबों कमाए होंगे, तो अब उसका हम इजहार करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये कुछ किया है और ये हमारी मेहनत का समर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
पहली चीज तो ये है कि यहाँ कोई चीज भी हकीकतन मेहनत का समर नहीं है, अल्लाह की इनायत है। दुनिया का नज्म इस उसूल पर नहीं कायम किया कि ये जो कुछ तुम करोगे उसका लाजमी नतीजा निकलेगा। हम मेहनत करते हैं, हम अपनी तरफ से असबाब मुहैया करते हैं, जो कुछ हमारे बस में है वो कर डालते हैं। उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, उसको बराबर करना, हमारी सही और जहद नतीजा खेज हो जाए, ये सब अल्लाह की मशीयत पर होता है। हम यहाँ कोई इस्तेहकाक लेकर भी नहीं आए, यानी ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आने से पहले कोई कारनामा किया था, कोई अल्लाह ताला के दीन की बड़ी खिदमत की थी। अल्लाह ताला की उस दुनिया में जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमने कोई गैर मामूली खिदमत अंजाम दी थी, उसके सिले में हमको दौलत मिल गई, इल्म मिल गया, हुस्न मिल गया, इक्तदार मिल गया, कोई पस मंज़र नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, ये उसकी मशीयत थी। उसने फैसला किया हमें हयात दे, शऊर दे, ये उसकी मशीयत है। हमारी सही को बराबर कर दे, ये भी उसकी इनायत और उसका करम है। तो सबसे पहली तालीम तो ये दी गई है कि दुनिया में जो कुछ मिलता है उसको इब्तला के उसूल पर समझो कि ये दुनिया इम्तहान के लिए बनाई गई है, इसलिए दिया है तो ये भी इम्तहान के लिए दिया गया है, ये तुम्हारा कोई इस्तेहकाक नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरे ये कि जिस वक्त ये सब कुछ हमें मिल गया, यानी वो चीज़ें जो इंसान के अंदर एक ख़ास तरह का जज्बा पैदा करती हैं और ये उसको एहसास दिलाती हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, तुम्हारे साथ अल्लाह ने खुसूसी करम किया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलत, इकतदार, इल्म, हुस्न में से कोई चीज़ वाफर मकदार में दे दी है, तो इससे जो हमारे अंदर एक जबिल्ली तस्कीन पैदा होती है उसी को कहा जाता है कि तफव्वुक या बरतरी की जबिल्लत है जो इससे तस्कीन पा लेती है, फिर वो अपना इजहार चाहती है। ये इजहार जिसको जमालियाती दायरा कहते हैं, अगर उसके अंदर होता है तो हुस्न पैदा करता है अपने अंदर। यानी इसको एक खातून ने एक मौके के ऊपर बयान किया तो मैंने देखा कि उसने बड़ी सही बात कह दी है। उसने कहा कि जिस वक्त मैं बनने संवरने के लिए कोई इकदाम करती हूँ, जेवरात पहनती हूँ या बनाव श्रृंगार करती हूँ, और मेरे बातिन में अपने आप को अच्छा लगने का दाइया होता है, तो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर तवाज़ो पैदा होती है, और जब दूसरों को दिखाने का दाइया पैदा होता है तो मनफी एहसास जन्म लेते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आपका जो ज़ौक है उसके इजहार तक ये बातें रहें, महदूद रहें, यानी इल्म का जहूर भी वहाँ तक हो। मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूँ कि हम जब इल्म हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पर दीनी का इल्म है जो सबसे पाकीज़ा इल्म है, दुनिया का कोई बड़ा इल्म हासिल करते हैं, वो भी इंसानियत की खिदमत के उलूम हैं, उन उलूम को हासिल करने में हमारी असली तगोदो क्या होनी चाहिए? अपने आप को इल्म से आरास्ता करना, अपने मसले को हल करना, ये कोशिश करना कि मैं एक बात को ठीक समझ लूँ। अगर बात यहाँ से शुरू होगी तो फिर इंसान ना सिर्फ ये कि सैर नहीं होगा कभी इस जद्दोजहद से, बल्कि अपने हदूद को भी हमेशा पहचानता रहेगा, और इससे आगे बढ़कर फिर अगर वो लोगों के लिए कोई बात करेगा या उस इल्म को लोगों तक पहुँचाएगा तो खिदमत के जज्बे से पहुँचाएगा। यानी उसे महसूस होगा कि मैंने एक दौलत पाई है और ये दौलत ऐसी है कि इसने मुझे रोशनी अता की है, मेरे बातिन को इसने रोशन किया है, तो मैं अपने अबनाए नौ तक भी इसे पहुँचाऊँ, वो भी इससे रोशनी हासिल करें। यहाँ तक जब बात रहती है तो बड़ी पाकीज़गी के साथ वो इंसान के वजूद का हिस्सा बनती है, आगे भी जाती है। लेकिन इंसान अगर उस चीज़ को अपना हक समझ ले, अपनी सही और जोहद पर इतराना शुरू कर दे, जो कुछ बयान करे इस मकसद के लिए बयान करे या जाहिर करे इस मकसद के लिए जाहिर करे कि लोग मुझे बड़ा माने, तो ये देखेंगे कि कुछ देर के बाद ना सिर्फ ये कि वो इन चीज़ों से महरूम होना शुरू हो जाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी उसका वजूद अजियत बनना शुरू हो जाता है। फिर वो तहकीर के कलिमात बोलेगा, दूसरों के साथ गलत तरीके से मामला करेगा, क्योंकि उसके अंदर किसी चीज़ के बारे में इस्तेहकाक का दायिया पैदा हो गया है, दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं करेगा। अल्लाह ने जो इम्तहान बरपा किया है वो उसकी निगाह से ओझल हो जाएगा, फिर वही चीज़ पैदा होगी जिसको यहाँ बुखल से ताबीर किया गया है। यानी बजाय इसके कि वो फयाज हो, फराख दिल हो, जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है उसको वो लोगों तक पहुँचाए। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि परवरदिगार ने मुफ्त दिया है, मुफ्त बांटता हूँ। तो ये जो मुफ्त दिया है मुफ्त बांटता हूँ, ये जज्बा है, ये असल में एक मतवाज़े इंसान का जज्बा है। वो अपने परवरदिगार के सामने भी सरनगूँ है कि तूने मुझे दे दिया, दरा हाले कि मैं इस्तेहकाक नहीं रखता था। ये मुफ्त दिया का मतलब क्या है? मेरे पास कुछ नहीं था, तेरी इनायत है, तेरा कर्म है, तूने मेरा इंतखाब कर लिया। अब मैं अगर लोगों तक पहुँचा रहा हूँ तो कोई एहसान नहीं कर रहा, या मेरी कोई बड़ाई नहीं है, तेरी दी हुई तौफीक है। मैं जो कुछ खुद पा चुका हूँ उसमें लोगों को भी शरीक कर रहा हूँ। वो अपनी दौलत में भी लोगों को शामिल करता है, इल्म भी लोगों तक पहुँचाता है, इकतदार मिलता है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, वो लोगों के लिए सरापुर अदल बन जाता है। ये सारी सिफात और असाफ उसी वक्त पैदा होते हैं जब इंसान गुरूर और तकबर की नफ्सियात से निजात पा ले, तफव्वुक और बरतरी की जबिल्लत को उसके हदूद में रखे, और एक मतवाज़े इंसान के तौर पर अल्लाह ताला के बंदे की हैसियत से दुनिया की हकीकत को भी समझे, और ये बात भी जाने कि ये दुनिया इब्तला के लिए और इम्तहान के लिए है, यहाँ किसी का भी कोई हक नहीं।
एक बात जो आपकी बात सुन के मेरे जहन में आई वो ये कि जिस तरह आपने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह की इनायत है, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत का बेपाया जहूर हुआ, जिसके नतीजे में मेरे अंदर वो सलाहियत भी पैदा हुई और उसके लिए जो असबाब और वसाइल की फरहमी थी उसकी भी तौफीक अरजानी हुई। ये चीज़ तो वाजह हो गई, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और नेमत और करम और एहसान है और फजल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अपनी हिदायत को हमारे खानदानों में जहाँ पर हम पैदा हुए उसी तहजीबी रिवायत में जारी कर दिया है, हमारे इर्द गिर्द इस्लाम मौजूद है, खुदा की हिदायत कुरान किताब मौजूद है। उसकी मौजूदगी के बाद भी होना ये चाहिए था कि हम उसको खुदा की इनायत समझते और हमारे अंदर ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा तवाज़ो पैदा होती, लेकिन उसके नतीजे में भी एक फख्र की नफ्सियात ने जन्म लिया कि गोया हम तो निजात दहिंदा हैं, हम लोग वो हैं कि जिनके पास सब कुछ आ चुका है। तो वहां पर भी असल में नेमत तो खालिसतन अल्लाह के फजल से मिल रही है, वहां पर जहां पर हमारा कोई इस्तेहकाक भी नहीं था, इकदाम भी नहीं था, वहां पर भी हम फकर में मुबतला हो जाते हैं।
इसी वजह से हमारे यहाँ बाद ऐसी इस्तलाहात राइज हो गई हैं जो आप कुरान मजीद को अलहम्द से वल नास तक पढ़ जाए आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मसलन हमीयत, तो कुरान मजीद में तो ये जाहिलियत के लिए आया है। गैरत, कहीं आपको ये लफ्ज़ मिलता है? कुरान मजीद यहाँ से इंसान को मुखातब ही नहीं कर रहा। कुरान मजीद की तबीर तो शुक्र है, अगर मुझे इस्लाम मिला है, मुझे दीन मिला है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत मिली है, कुरान जैसी किताब मेरे पास है, तो ये मौका शुक्र है। इसके लिए कभी फ़ख्र के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। कुरान मजीद को आप शुरू से आखिर तक पढ़िए, वो अपनी सारी दावत की बुनियादी शुक्र पर रखता है। मेरा परवरदिगार उसने मुझे हयात दी, मेरा परवरदिगार उसने मुझे शऊर दिया, मेरा परवरदिगार उसने मुझे इंसान बनाया, मेरा परवरदिगार उसने मुझे ये बशारत दी कि मैं तुम्हें अबदी ज़िंदगी दूंगा, तो मैं सरापा शुक्र हूँ। इसीलिए मैंने तवज्जो दिलाई कि क्या पीछे कोई कारनामा करके आए थे जिसके नतीजे में ये सब मिला है? यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ बहुत मेहनत की है, तो बहुत मेहनत करने के लिए जो मुझे आज़ाद दिए गए, जो दिमाग दिया गया, जो कुव्वत दी गई, जो औकात दिए गए, जो कुछ मोहलत मैसर की गई, किसकी दी हुई? उस परवरदिगार की दी हुई है। तो अगर ये सब कुछ मुझे मुफ्त मिला है, बिला इस्तेहकाक मिला है, मैंने पीछे कोई कारनामा नहीं किया था, दुनिया में आने से पहले मैंने कोई खिदमत अंजाम नहीं दी थी जिसके सिले में ये सब मिला है, ये मेरे परवरदिगार की इनायत और उसका करम है, तो फिर इसमें फ़ख्र का क्या सवाल है? ये तो एक एक लम्हे में शुक्र का मकाम है। हमारे दीन की बुनियाद ही इस पर रखी गई है। चुनाचे अल्लाह ताला जब अपने दीन की हिदायत को नुमाया करके बयान करते हैं तो क्या कहते हैं? इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तुम्हारे पास रास्ते ही दो हैं, या तुम नाशुक्री करोगे या शुक्रगुजार बंदे बनकर रहोगे। तो शुक्रगुजार बनकर इंसान अपने रब को पहचानता, शुक्रगुजार बनकर अपने मुने में हकीकी के हुकूक अदा करता, शुक्रगुजार बनकर इबादत करता, तो कभी फ़ख्र में मुबतला नहीं होता, बल्कि अपनी आजजी का इजहार करता। और अगर उसको कोई नेमत मिली है, अगर उसको कोई बर्तरी की चीज़ मिली है, तो इसको भी अपने परवरदिगार की और परवरदिगार के दीन की और अपने परवरदिगार की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ करता है।
ठीक। अच्छा, हम सब एक चीज़ और बताइएगा। हमने ये देखा है कि आम तौर पर उन लोगों में फ़ख्र की नफ्सियात पैदा होती है जो अपनी सलाहियत को मनवाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैंने ये काम किया है, आगे बढ़ते हैं। ज़माना भी तो अप्रिशिएट नहीं करता लोगों की खिदमात को, हकीकी टैलेंट को, उनकी सलाहियतों को, उनकी काविशों को। तो अगर हम अपने भाइयों को बताना बचाना चाहते हैं फ़ख्र की इस नफ्सियात से, तो ये भी तो होना चाहिए कि अगर मैंने कोई कायर है नुमाया अंजाम दिया है, तो आप उसकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, ताकि मुझे मौका ही ना पैदा हो कि मैं आगे बढ़ के अपनी शेखी बिगाड़ने पे लगूं या मैं अपने कारनामे गिनवाऊं। तो हमारे माशरे में इसकी भी कमी है कि हम लोगों की अच्छी चीज़ों की तहसीन करना, तारीफ करना, हौसला अफजाई करना, उन्हें इंकरेज करना, इसकी भी कोई रिवायत पैदा नहीं करते, जिसके नतीजे में फिर आदमी इतना बावला हो जाता है कि खुद ही आगे बढ़ बढ़ के अपनी बातें बताता है।
उसका भी तरीका यह है कि किसी सोसाइटी के अंदर लोगों का हक नहीं पहचाना जाता, या उनकी ज़ुबान से कोई तहसीन का कलमा नहीं निकलता, या वो किसी आदमी की हौसला अफजाई नहीं करते, तो हम आगे बढ़कर ये काम खुद करें, हम दूसरों के बारे में करें। अगर हम ये ख्याल करेंगे कि लोग हमें नहीं पूछ रहे, वो हमारी तारीफ नहीं कर रहे, वो हमारी सिफात या औसाफ का एतराफ़ नहीं कर रहे, तो इसके नतीजे में तो गिला पैदा होगा, शिकायत पैदा होगी। हमारे लिए किसी अच्छाई को पैदा करने का ज़रिया यही है कि हम उस अच्छाई को खुद अपना लें और हम लोगों की हौसला अफजाई करें, हम उनकी तारीफ़ करें, हम फराख दिली के साथ उनकी अच्छी खिदमात का एतराफ़ करें। ये चीज़ जब हम करेंगे तो लोगों के लिए भी इसलाह का ज़रिया बनेगी। और उसूल में ये चीज़ बताएं लोगों को कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का एक पहलू ये भी है कि अपने अबनाए नौ की सलाहियतों का, उनके औसाफ का एतराफ़ किया जाए। ये एतराफ़ इंसान को बड़ा बनाता है, इससे किसी के यहाँ कोई कमी नहीं आ जाती। और ये बाहमी एतराफ़ है जिससे मोहब्बत पैदा होती है, ताल्लुक़ पैदा होता है, एतमाद पैदा होता है, काम इकट्ठे करने के जज्बात पैदा होते हैं, और फिर एक एक दो ग्यारह की सूरत हल पैदा हो जाती है। हम चूँकि एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक दूसरे के अयूब तलाश करते रहते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी यही कीड़े चुनने में बसर हो जाती है। हम शहद की बक्खी बनकर उसके फूलों से रस नहीं चूसते, बल्कि गलाजत की मक्खी बन जाते हैं और उन्हीं जगहों पर जाकर बैठते हैं जहां गलाजत होती है, कौन इंसान है कि जिसके यहाँ कोई खामी नहीं होगी, जिसके यहाँ कोई खराबी नहीं होगी, लेकिन हमारी निगाह फिर उन्हीं चीज़ों पर पड़ती है। और उसमें भी ये नहीं होता कि किसी भाई की कोई खामी सामने आई है तो उससे राबता करें, उससे बात करें, उसके सामने अपनी बात रखें, खैरखाही के जज्बे के साथ उसको तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ी खूबियाँ दी हैं, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बहुत से औसाफ पैदा किए हैं, ये खामी है, इसको भी दूर कर लो। ये जज्बा नहीं पैदा होता, बल्कि उस चीज़ को उछालने के लिए तरगीबात शैतान पैदा करता है। ये वो चीज़ है जिसको कुरान ने कहा है नज़्, यानी वो उकसाएगा और फिर उसकी उकसाहट में मुबतला होकर हम उसको अपना मिशन बना लेते हैं और उसी के तहत अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं और जो कुछ पहले कमाया होता है वो भी गारत कर बैठते हैं।
नुक्ता बिल्कुल वाजह हो गया। कुरान मजीद का एक और मकाम सूरह लुकमान का इसी मौजू से मुतल्लिक, उसको भी मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इरशाद फरमाया, और लोगों से बेरुखी ना करो और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, इसलिए कि अल्लाह किसी अकड़ने और फख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। हकीकत यह है कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। इसी बात की तौज़ीह तफसीर में हम सब अपनी तफसीर अल बयान में लिखते हैं, यानी चाल में अकड़ के बजाय फरोतनी और तवाज़ो, और आवाज़ में करख्तगी और खशूनत के बजाय नरमी पैदा करो। इखलाक के रज़ाइल में सबसे बुरी चीज़ तकब्बुर है, और ये इंसान के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी चाल और अंदाज़ गुफ्तगू हर चीज़ से ज़ाहिर होता है। लुकमान ने अपने बेटे को ये उसी से बचने की नसीहत की है। हम सब हम ये देखते हैं आज के दौर में, ये दौर है जिसमें आप हर चीज़ को मिनटों में नुमाया कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक और ये रील और ये ज़माने का दौर आ चुका है जिसके अंदर मिनटों लम्हों में आप अपनी बात को लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ पैदा हुई है, कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखें जो लोग आते हैं इस तरह कैमरों पे, ऊंची ऊंची हरकतें होती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, मशहूर होने का एक जज्बा है गैर मामूली जो नज़र आ रहा होता है, और वो जब वो चीज़ वायरल होती है तो उस पर बड़ी खुशी भी होती है और खुद भी उसको फैला रहे होते हैं। ये हर दौर में औज़ार बदलते रहते हैं तकब्बुर के, शेखी बिगाड़ने के, और आपको लगता है कि इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया है ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरह का एक शैतानी चरगा बन गया कि अगर आपने अपने आप को चाहते हैं कि अपनी शेखी बिगाड़ें तो उसके लिए आप प्लेटफॉर्म ले
ये दुनिया बनाई इस तरह गई है, इसमें जो चीज़ें भी वजूद में आती हैं जिस तरह उसके बड़े गैर मामूली फ़ायदे होते हैं, इसी तरह उनके साथ शैतनत भी लगी होती है। दुनिया को बनाया इस तरह गया है। ये बताया ना कि हमने हर चीज़ को यहाँ ज़ौजैन की सूरत में बनाया है, वो ज़ौजैन बाज़ औक़ात तज़ाद की सूरत में मौजूद होते हैं, जैसे रात के मुकाबले में दिन है, इसी तरीके से झूठ के मुकाबले में सच्चाई है। तो यही मामला हमारे तमाम आमाल का भी हो जाता है, और जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से नेमत के तौर पर मिलती हैं वो एक तरफ हमारे लिए नेमत होती हैं, दूसरी तरफ उनमें ज़हमत बनने के इम्कान भी मौजूद होते हैं। इंसान को चूंकि अल्लाह ताला ने अकल दी है, दुनिया इब्तला के उसूल पर बनी है, तो तकाजा यही है कि हम उसमें नेमत का पहलू तलाश करें, उसको अपने लिए भी नेमत बनाएं, दूसरे लोगों के लिए भी नेमत बनाएं। लेकिन हम उसे अपने लिए भी जहमत बना लेते हैं। ये हकीकत है कि जो लोग तफव्वुक में मुबतला होकर शेखी बिगाड़ते हैं, इतराते हैं, दूसरों के सामने किसी चीज़ को ऐसे जाहिर करते हैं जिस तरह के वो फिलवाके उनके यहाँ मौजूद नहीं होती, तो थोड़ी अरसे के बाद खुद उनके अपने बातिन में खला पैदा होना शुरू हो जाता है और उन्हें खुद एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया है। ये हकीकत है कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ रखी गई है जिसको कुरान मजीद ने कहा ना कि बल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, वो देख रही होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब आप कोई सलाहियत रखते हैं और उसका इजहार करते हैं, कोई हुनर है, कोई इल्म की चीज़ है, तो इस मुतवाज़े तरीके से उसको सामने लाइए और इसने अच्छे तरीके से सामने लाइए कि वो आपके लिए भी रिफत का बायस बने और सुनने वालों के लिए भी वो तरगीब का बायस बने कि वो भी अपनी सलाहियतों को देखें और इसी तरीके से सलीके और तहजीब के साथ उनको सामने लाएं।
कुरान मजीद के अंदर गुरूर, फखर, तकब्बुर, शेखी बिगाड़ना, अकड़ के चलना और लोगों पर अपना धौंस जमाना, इस जैसे अखलाकी रज़ाइल और अमराज के बारे में जो कुछ ज़ेर बहस था आयात की सूरत में हमने आपके सामने रखा। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चंद हदीस भी रख देते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान न दूसरों को लानतान करने वाला होता है, न बदखुल्क और फौशगोई करने वाला होता है। हम सब ने अपनी जो हदीस के ऊपर काम है इल्म नबी के तहत, इसकी तौज़ीह में लिखा है, इस्लाम का मकसद ही तथीर अखलाक है। उसमें दाखिल होने के बाद भी कोई शख्स अगर दूसरों को लानतान करता है या बदखुल्क और फौशगो है तो इसके साफ मानी यह है कि वो दर हकीकत इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। इसके लिए इस्लाम महज एक नाम है जो उसने अपने लिए इख्तियार कर लिया है। और हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया है कि बज़ाहिर तो दुनिया में तुमने जो भी शरारत रखी है, कयामत के दिन ईमान मोतबर नहीं होगा अगर वो अपने हकीकी शऊर के साथ तुम्हारे अंदर नहीं पाया जाता है। एक और रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, नहीं खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, नहीं खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। लोगों ने पूछा है रसूल्ला कौन, फरमाया वो जिसके हमसाए उसके बवायक से महफूज ना हो। पूछा ये बवायक क्या है, फरमाया उसका शर। हम साहब ने उसकी तौजीह में लिखा है यानी मोमिन होकर वो ये रवैया अख्तियार नहीं कर सकता जो आगे बयान हुआ है, इसलिए कि ईमान और इस्लाम की हकीकती तवाज़ो और फरोतनी है। इसके साथ किसी शख्स से तवक्को नहीं हो सकती कि वो दूसरों के लिए बायस आज़ार बनेगा। कुरान मजीद के साथ अहादीस को भी हम ज़ेर बहस लेकर आए। एक सवाल गांधी साहब की खिदमत में आखिर में रख देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का खात्मा। हम सब ये बयान कीजिएगा कि हमारे यहाँ आजकल बहुत सख्त माशी तंगी है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, ऐसे हालात में लोग ये पूछ रहे हैं कि टैक्स का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतों की जानिब से डाला जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत खुद मजबूर हैं, आलमी मालियाती इदारे उन पर कह रहे हैं। इसमें एक सूरत ऐसी पैदा हो जाती है कि जिसमें आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सस्टेन ही नहीं कर सकते, दुकानदार हैं, बास फैक्ट्री मालकान हैं, तो उस सूरत में क्या इस्तरार की सूरत को सामने रखते हुए कुछ टैक्स के मामलात हों या हुकूमत के साथ कुछ लेन देन के मामलात हों, उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि कम से कम सर्वाइवल तो इतने पैसे तो बच जाएं कि कुछ खाना वाना खा सकें।
उसूल के लिहाज से तो ये बात कही जा सकती है कि अगर किसी आदमी के लिए इस्तरार की सूरत पैदा हो गई है तो उसमें हुरमतों का मुआखज़ा उठ जाता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। असल तरीका ये है कि हम बेदार हों और ऐसी कौम बने कि जब हुकूमत कोई गलत इकदाम कर रही है तो सोसाइटी अपने आप को मुनज़्ज़म करे, लोग अपनी बात पहुँचाएँ, गलत कानून को बदलवाने की सही करें। हुकूमतें भी आखिर लोगों की बात पर खड़ी हैं, ऐसा तो नहीं कि बादशाहते हैं। जिन जगहों पर बादशाहते हैं वहाँ पर भी उनको ये अंदाज़ा होता है कि लोगों की तरफ से अगर कोई रद्द अमल आएगा तो हमारी बादशाहत को भी बहा ले जाएगा। तो करना ये चाहिए कि जब कवानीन गलत हो रहे हों तो उसमें अच्छी तजावीज़ मरतब की जाएँ, दानश्वर लोगों की रहनुमाई करें, उलमा लोगों की रहनुमाई करें और इस तरह क़्यादत सामने आकर लोगों की बात आगे तक पहुँचाए। वरना हर जगह इस्तरार के नाम पर लोग झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। उसूल में ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ताला ने देखिए जिन चीज़ों को हराम किया है उनके बारे में भी बयान कर दिया है कि इल्ला मन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आत, यानी इंसान अगर मजबूर हो जाता है, जान पर आ गई है, माल पर बन पड़ी है तो क्या करेगा, फिर जाहिर है कि अपने आप को बचाने की सही करेगा। इस तरह की सूरत हाल किसी आदमी के लिए फिलवाके पैदा हो गई है, इसका फैसला मैं ही आप तो नहीं कर सकते, वो खुद ही कर सकता है, लेकिन इसको बतौर तदबीर के इख्तियार कर लेना ये किसी अच्छी कौम का तरीका नहीं है। यानी हम पहले इस बात का अंदाज़ा करें कि हमारी कौम कहाँ खड़ी है, हम उसकी रहनुमाई क्या कर सकते हैं और किस दर्जे में उसके मसाइल को हल करने के लिए हम कोई तजवीज़ पेश कर सकते हैं। सोसाइटी को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, एक आवाज़ बनाना, अच्छे तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुँचाना, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और ज़्यादा अहमियत हमेशा इन्हीं चीज़ों को देनी चाहिए। और इसमें मैं ख़ास तौर पर यह कहूँगा कि उन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने इस मामले में फरमाई हैं। हमारे यहाँ लोगों पर महासिल आयद करने और हुकूमत के लिए सरमाया फराहम करने के जो तरीके हैं उनमें कभी अल्लाह के बताए हुए तरीकों की तरफ या खुलफाए राशिदीन की कायम करदा सुन्नत की तरफ देखा ही नहीं गया। हमारे माहिरीन मईशत भी उन पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। वरना ये हकीकत है कि जो तरीके अब इख्तियार किए जा रहे हैं इससे पूरा जोर लगाकर भी वो मसले हल नहीं होते, जो अगर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को इख्तियार किया जाए तो चशम जदन में हल हो जाते हैं।
ठीक, नुकता बिल्कुल वाजह हो गया। वो क्या तरीके इंशाल्लाह एक मुस्तकिल गुफ्तगू उस पर रखेंगे। वक्त यहाँ पे खत्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। तब तक आपका बहुत शुक्रिया।